ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे बताया गया कि यहाँ नीमच और दिल्ली का ग्रुप आया है। जो नीमच के भाई बहने हाथ उठाए, अच्छा, अधिकतर नीमच के हैं, और जो दिल्ली से आए हैं वे हाथ उठाएं। तो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। शांति वन में भी बठिया चल रही है, पांडव भवन में भी बठिया चल रही है, मानसरोवर, आनंद सरोवर, सब जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। मनमोहिनी वन में भी चल रहे हैं। तो बरसात के मौसम में आप सभी प्रोग्राम में आए हैं पट्टी करने, तो अच्छा लग रहा है ना? यहाँ का मौसम अच्छा लग रहा है? फॉगी फॉगी अच्छी लग रही है? दिल्ली में तो हम कई बार कहते हैं दिल्ली में स्मॉग होता है, स्मॉग, स्मॉग, स्मॉग माना स्मोक और फॉग का मिलावट, धुआं माना पोल्यूशन, प्रदूषण के साथ फॉग, ये दिल्ली में उसको स्मॉग कहते हैं। पर यहाँ है केवल फॉग, यहाँ पर प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण नहीं है, नीमच में है प्रदूषण, इतना नहीं, नहीं, लेकिन यह फॉग है, सारे बादल नीचे आ जाते हैं और ऐसे लगता जैसे हम सूक्ष्म वतन में घूम रहे हैं। ऐसा अनुभव हुआ आपको? तो सूक्ष्म वतन निवासी बरसातों में हम बन जाते हैं। इतनी फॉग होती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। एक हंसी की बात सुनाते हैं। बड़ी दीदी का महीना चल रहा है, तो एक बार बड़ी दीदी ने किसी को पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा कि सूरज भाई एक हफ्ते से गुम है। अब जिसके जिसको ये पत्र मिला, तो जिसको ये पत्र मिला उसको लगा कि सचमुच सूरज भाई कहाँ गुम हो गया। तो बहुत इंक्वायरी हुई, क्या हुआ, क्या हुआ, सूरज भाई गुम हो गया। तब पता चला कि सूरज भाई जो आकाश में है ना, वो गुम हो गया है, क्योंकि एक हफ्ते से सूरज निकला ही नहीं। एक हफ्ते से लगातार बारिश बारिश, दिन रात बारिश ही बारिश थी, और बारिश में तो न कपड़े सूखते हैं और न कभी धूप निकलती है, बारिश ही बारिश। लेकिन झरने बहुत बहते हैं। हमारी दादी जी क्या करती थी, जब ऐसी बारिश हुई, बहुत समय बाद बारिश हुई, तो दादी ने कहा कि सब पैदल चलो, बारिश में सब रेनकोट छाता उठाओ और बारिश में चलते हैं, और बारिश में झरना देखने जाएंगे और फिर म्यूजियम में पकौड़ा खाएंगे। दादी जी तो बहुत रमणीक भी थी और ऐसे हंसाती भी थी, तो कुछ न कुछ स्विच करती थी। तो इसीलिए तो सचमुच सब निकल पड़े, मधुबन निवासी रेल कोट और वो छतरी लेकर के, और खूब झरने बह रहे थे। अभी आप जाएंगे ना कल? कब जाना है? परसों। तो देखना रास्ते पर खूब झरने बह रहे हैं। और ऐसे टूरिस्ट आते हैं खास झरनों में स्नान करने लिए, तो झरनों को देखने और बादलों को देखने, ये पहाड़ों की विशेषता है। लेकिन थोड़ी ठंडी भी होती है सुबह सुबह, तो आप सब तैयारी करके लाए हैं ना, छाता और स्वेटर शॉल सब लाए हैं ना कि नहीं? सब ले आए हैं? नहीं लाए हैं? सब लाए हैं, क्योंकि खास सवेरे के समय तो जरूरी है ढकना खुद को। तो बहुत सुंदर विषय हमें दिया गया है, कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। तो पहले हम दोनों का अर्थ समझेंगे, कर्म योग किसे कहेंगे और कर्म भोग किसे कहेंगे। कर्म भोग केवल शारीरिक व्याधि नहीं है, वैसे तो हम यही मानते हैं कि शारीरिक व्याधि, शरीर को रोग लगा, बुखार आया या कोई भी शरीर की बीमारी आई, तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा कर्म भोग है। पर कर्म भोग केवल शरीर की बीमारी नहीं है, कर्म भोग में हर प्रकार की भोगना आती है। फिर चाहे वो शरीर का रोग हो, चाहे कोई हिसाब किताब किसी आत्मा के साथ है, चाहे हमारे पुराने संस्कार हमें परेशान कर रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या है, कोई भी विघ्न आता है, कोई भी रुकावट आती है, वो सब कर्म भोग के अंतर्गत आता है, क्योंकि उससे तनाव तो होता ही है। तो जिस बात से या जिस चीज से तनाव हो, उसका दुख हो, अशांति हो, अंतर अंदर में कोई पीड़ा हो, वो कर्म भोग का रूप है। और बाबा ने तो हम बच्चों को यही सिखाया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे तन की बीमारी, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हमें उस परिस्थिति के वश नहीं होना है, स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय पानी है। अब स्वस्थिति शब्द को आप यहाँ कर्मयोग कहें, दादी गुलजार सदा यही कहती थी, वो जो बात आती है ना, कोई भी बात, वो तो चली जाती है, लेकिन हम उस बात को पकड़ के रखते हैं, और पकड़ के रखने से वो बात बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो कष्ट देती है। बात ज्यादा अकलमंद है, वो तो आई और चली गई, लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा तो हम उसकी भोगना भोगते। किसी पर गुस्सा किया, अब जिस पर गुस्सा किया, चलो गुस्सा किया और हम भूल भी गए, लेकिन जिस पर गुस्सा किया वो उस बात को पकड़ के रखेगा, हमको इसने गुस्सा किया, और जैसे मुझे देखेगा, घूर के देखेगा, आपने इसने मुझे गुस्सा किया, और हम तो भूल भी गए, लेकिन वो हिसाब किताब बन गया, और कभी न कभी वो मुझ पर निकालेगा, भले अभी नहीं बोलेगा, लेकिन कभी न कभी जरूर निकालेगा वो जो अंदर में भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कर्म करो ही क्यों, कोई भी विकार के वशीभूत हम कर्म करते हैं उसका फल तो जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो कर्म भोग का रूप बन जाएगा। हमने तो उसको साधारण रूप में लिया, लेकिन वो जो उसका प्रभाव पड़ा वो तो कई जन्मों तक चल सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करो। कैसे चुकतू करेंगे? कई बार हम कोई भूल करते हैं तो चलो माफी मांग लेते, सॉरी कह देते हैं, लेकिन सॉरी कहने से वो बात तो खत्म नहीं होगी। यहां तक भी चलो हम कह देंगे माफ कर दो, समझो भूल हो गई माफ कर दो। भक्ति मार्ग में भी भगवान से कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा ना, माफ भगवान से कहते रहम करो, कृपा करो, मेहर करो। हा? लेकिन बाबा कहते हैं रहम आप अपने ऊपर खुद करो, भगवान से आशीर्वाद रहम कृपा ये मांगो मत, लेकिन खुद अपने ऊपर करो। और कैसे करो? उसके लिए बाबा ने कहा श्रीमत। जो जो श्रीमत हमें मिलती है उस पर चलो, तो आप अपने ऊपर कृपा रहम या कहो दुआ, जो भी शब्द कहो वो आप कर सकेंगे। और अगर गलत कर्म कोई किया है मैंने, उसी की भोगना है वो, तो हम उसको खुशी खुशी चुकतू करें, दुखी होकर चुकतू न करें। हाय मेरा कर्म हिसाब, हाय मेरा कर्म, कर्म को दोष न दे। हम कहते हैं जो कर्म भोग है ये है तो हमारे कर्म का फल, तो हम उस कर्म की गति को समझें, कर्म की गति को प्यार करें। जब हम कहते हैं ना कर्मों की गति, और कर्म गति के लिए क्या कहा जाता है, कर्म की गति बड़ी बलवान है, परंतु साधारण मनुष्य इसको समझ नहीं सकता है। इसीलिए वो यही पूछता रहता, ऐसा क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या किया, तो मुझे ये क्यों सहन करना पड़ता है, तो मैं क्यों और क्यों नहीं। या दूसरे रूप में कई बार होता है, मैं क्यों नहीं वो क्यों, कुछ प्राप्ति हुई तो वो क्यों मैं क्यों नहीं। अब ये सब कर्मों का खेल है। इसीलिए कहा जाता है भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, और जो कुछ होता है सब ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है। और केवल फिक्स्ड ही नहीं है, सब सही है। इसलिए प्रश्न तो उठने की बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात हम जरूर कर सकते हैं, उस विघ्न को, उस परीक्षा को, उस पेपर को हम कर्म योग से खत्म कर सकते हैं। जो श्रीमत बाबा हमें देते हैं वो श्रीमत के अनुसार चल करके। तो कर्म भोग कई रूप से आता है, इस जन्म का ही नहीं, पूर्व जन्मों का भी हो सकता है। कौन मेरे पास किस रूप में आता है, मेरा बच्चा बनकर कौन आता है, मेरी पत्नी बनकर कौन आता है, मेरा पिता कौन बनता है, ये सब है तो कर्मों का हिसाब किताब। अब उस कर्मों के हिसाब किताब को जिसको हम कर्म भोग कहते हैं, उसको कर्म योग से चुकतू कैसे करें? तो कर्म योग किसको कहेंगे? कर्म योग का अर्थ क्या है? दुनिया में कर्म योग का अर्थ अलग लेते हैं और बाबा ने हमें कर्म योग का अर्थ दूसरा बताया। दुनिया में क्या लेते हैं कर्म योग का अर्थ? कर्म से योग, उसको कर्म योग कहते हैं। हमारे पास कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक बार नर्सिस का प्रोग्राम हुआ था तो हमने देखा उस ग्रुप में कितनी नर्सिस आई थी अलग अलग हॉस्पिटल्स की, और इतनी बड़ी आयु वाली भी थी लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी, कुमारियां थी। इतनी बड़ी नर्सिस, मेट्रन भी होगी कई थी, इंचार्ज भी होगी कई डिपार्टमेंट्स की, लेकिन वो कुमारियां थी। तो हमने एक नर्स से पूछा कि आपने शादी नहीं की? तो उसने जवाब क्या दिया? आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन, मैं मेरी जो प्रोफेशन है नर्स हुए उससे ही मैंने शादी कर ली है, इसीलिए मेरा पति वो प्रोफेशन है, तो इसलिए और पति की क्या जरूरत है। हम लोगों से भी पूछते हैं ना बहनों से, आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? तो हम क्या जवाब देते हैं कि हमने शिव बाबा से कर ली, ऐसे ही कहते हैं ना, शिव बाबा से कर ली, शिव बाबा हमारा साजन है। तो उसने कहा कि मैंने अपनी नर्सिंग प्रोफेशन से शादी कर ली है, इसलिए वो शादी की जरूरत ही नहीं है। और एक ने यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, इतनी मैं बिजी रही अपने प्रोफेशन में कि शादी का संकल्प भी नहीं आया। खैर वो तो उनका उत्तर है, लेकिन हम कर्म, इसी को कर्म योग कहते हैं, कर्म से योग। इतनी व्यस्त रही उस कर्म में जो और बातें, जीवन की बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो बाबा हमको कर्म योग किस रूप में कहते हैं? कर्म से योग नहीं, लेकिन कर्म करते हुए बाबा से योग, कर्म करते हुए बाबा से योग, इसको कहेंगे कर्म योग। हम कर्म सन्यासी नहीं है, सन्यासी लोग अपने आप को कर्म सन्यासी कहते हैं। और क्या अर्थ देते हैं कर्म सन्यासी का? कि भोजन नहीं पकाते हैं। मैं कई सन्यासियों के पास गई, यहाँ रक्षाबंधन पर यहाँ कई महात्माएं मिली, इनकी गुफाएं हैं, गुफा जैसे मैं रहती अभी भी है। एक जगह में गई राखी बांधने उनको, वो स्वामी जी को, तो मैंने देखा छोटी सी कुटिया थी और उसमें कोई चूल्हा वल्ला नहीं जल रहा था, कुछ भी नहीं, बस किताबें रखी थी और कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा स्वामी जी आपने भोजन किया? तो उसने कहा हाँ कर लिया। तो मैंने कहा यहाँ भोजन पकाते नहीं है? तो कहा नहीं, हम तो सन्यासी है, हम भोजन पकाते नहीं है। तो कहाँ से आता है भोजन? तो कहते हैं बस हमारे जो अनुयायी है वो हमें भोजन पहुंचाते हैं, हम तो कर्म सन्यासी है। और बाबा हमें क्या कहते हैं कि कर्म सन्यासी तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि हर एक कर्म तो कर ही रहा है। आत्मा शरीर में आई और शरीर में आते ही श्वास चालू हो गया तो कर्म तो शुरू हो ही गया। भले बोल नहीं पाएगी गर्भ में है, पर कर्म तो शुरू हो ही गया। फिर जन्म लिया तो पहली आवाज, हाँ, बच्चा रोने लगता है, वो भी कर्म हुआ। कई बार वो रोता नहीं है, रोता नहीं है, पर जन्म लिया हंसता भी नहीं है, रोता भी नहीं है, तो माँ को चिंता हो जाती कि पता नहीं ये गूंगा बहरा तो नहीं है, तो जबरदस्ती भी नर्स उसको ऐसे मारती है कि ताकि आवाज करे, ताकि कुछ करे, एकदम ऐसे ही मुर्दे की तरह ना हो। तो जन्म लिया, कर्म शुरू हुआ। तो इसीलिए कर्म सन्यासी तो कोई बन ही नहीं सकता है। और गीता में भी है, गीता में लिखा है कि कर्म सन्यास से कर्म योग सन्यास श्रेष्ठ है। अब ये फिर तीसरा शब्द है, कर्म योग सन्यास। कर्म करते परमात्मा से योग और बुराइयों का, विकारों का सन्यास, इसको कहेंगे कर्म सन्यास। बाकी कर्म कर्म योग सन्यास, लेकिन कर्म सन्यास तो कभी हो ही नहीं सकता है। आत्मा जब परम धाम में है तब कोई कर्म नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है। पर जैसे ही शरीर में आई, कर्म शुरू हो गया। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम कर्म योग सन्यासी हो। कर्म करते विकारों का सन्यास और मन बुद्धि से शिव बाबा की याद। कर्म हम छोड़ नहीं सकते और न छोड़ना है। आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक तो कर्म चलता ही रहेगा। हाँ, परम धाम में आत्मा है तो बिल्कुल साइलेंस में है, एकदम साइलेंस। तो कर्म योग किसको कहेंगे? कर्म करते भी योग में रहना। अर्थात बाबा किसका बहुत सुंदर भावार्थ बताते हैं, कर्म भी करो लेकिन कर्म करते हुए भी उपराम रहो। कर्म करते भी उपराम रहो। और कैसे उपराम रहेंगे? जब मैं और मेरा ये दो जो भाव है उनसे परे रहेंगे। कर्म करना है पर मैं कर रही हूं, ये मेरा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही कर सकती हूँ। बाबा कहते हैं ये जो शब्द है ना, ये कर्म योगी के शब्द नहीं होंगे। क्योंकि मैं अगर कर भी रही हूं तो मैं कौन? मैं आत्मा। फिर बाबा कहते हैं तुम तो करावनहार हो, तुम करावनहार हो, इंद्रियों से कर्म करवाती हो, फिर कर्म इंद्रियों को अपने निग्रह में रखती हो। जैसे एक कछुआ होता है, चलता भी है और चलने के बाद फिर अपने इंद्रियों को अंदर में ले लेता है, समेट लेता है। तो कर्म योगी ऐसे नहीं कि कर्म त्यागता है, कर्म योगी ऐसा भी नहीं है कि उसको फल नहीं मिलता, लेकिन उस कर्म का फल की इच्छा नहीं रखता। फल कैसे मिलता है? कोई मेरी महिमा कर देगा, कोई मुझे अधिक मान ले देगा, मेरा नाम होगा, तो नाम मान शान महिमा अगर ये होती है, इसका मतलब मुझे उस कर्म का ये रिटर्न मिला। लेकिन कर्म योगी उस रिटर्न की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वो समझता है कि मैं आत्मा करावनहार, इंद्रियों से कर्म किया और फिर कर्म बाबा की याद में किया और फिर वो उसका जो फल है वो बाबा पर छोड़ दिया, जिसको ही गीता में बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है लेकिन फल की चिंता मत करो। फल ईश्वर पर छोड़ दो। इसीलिए ये कभी भी नहीं आए कि मैंने किया, क्योंकि मैंने किया तो जरूर हम सफलता की इच्छा रखेंगे, पर सफलता नहीं मिली तो दुखी तो नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं तो निमित्त था, बाबा ने कराया या आत्मा ने शरीर की इंद्रियों द्वारा किया, तो मैं तो आत्मा अलग हो गई इंद्रियों से। तो कर्म करते भी फल की इच्छा नहीं, ये सच्चे कर्म योगी की निशानी है। उसी समय फल नहीं चाहिए। अगर कोई देता है तो बाबा की तरफ पॉइंट आउट करो, अपने में नहीं फंसाओ। जो कर्म योगी होगा वो अपने में नहीं फंसाएगा, न मान शान की इच्छा रखेगा, न अपने में फंसाएगा, और ही करेगा भी और न्यारा भी रहेगा। वो सच्चा कर्म योगी है, क्योंकि उसने बाबा की याद में किया तो बाबा ने कराया। अब बाबा ने कराया तो बाबा जाने, महिमा उसकी है मेरी नहीं, मैं तो केवल निमित्त था। फिर अगर सफलता मिली तो बाबा को मिली सफलता, श्रेय बाबा को जाता है, मुझे नहीं, मैं श्रेय नहीं ले लूंगा। अगर असफलता भी मिली तो भी दुखी नहीं हूं। जो कर्म जिनकी इच्छा होती है कर्म का फल पाने की, अगर फल मिला अच्छा, हाँ खुशी होगी, मैंने किया वर्णन करेगा, सबको बताएगा। और अगर असफलता मिली तो दुखी हो जाएगा। सफलता मिली तो खुशी बढ़ेगी, और असफलता हुई तो दुखी होगा। लेकिन जो सच्चा कर्म योगी है वो सफलता में भी कोई अभिमान नहीं दिखाएगा, और असफलता में भी कोई दुखी नहीं होगा। तो सच्चा कर्म योगी किसको कहेंगे? जो सफलता में फुगे की तरह फूल न जाए, और असफलता में सारी हवा उसकी निकल जाए, वो भी ना हो। जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, गीता में आता है, ज्ञानी तो आत्मा किसको कहा जाएगा? ज्ञानी तो आत्मा वो है जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, सब में समान। महिमा करे कोई उसकी तो भी वो कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। और बाबा तो साफ कहते हैं, अगर कोई आपकी महिमा करे तो आप क्या कहेंगे? ये तो बाबा ने दिया है ना वरदान। बाबा का बनने से पहले थोड़ी मुझे ये पता था, अभी इतना ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, पहले थोड़ी ये ज्ञान था। बाबा का बनने से पहले पता ही नहीं था भगवान हमें कैसे मिलेंगे, कुछ पता नहीं था, कौन है भगवान, कहाँ है, कैसे मिल सकते हैं। बस यही कह देते थे किसी भी रूप में भगवान मिल जाए, किसी भी रूप में भगवान मिल सकता है, पर किसी भी रूप में तो नहीं, भगवान का तो तन मुकरर है, ऐसे नहीं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वारा अवतार या अवतार लेगा। उनका तो एक तन मुकरर है, जो लोन पर लेते हैं, वो भी आज बाबा ने कहा मैं सदाई थोड़ी को इस पर सवार हूं, क्योंकि मुझे तो बहुत काम है, बाबा को बहुत काम है, भक्तों को साक्षात्कार कराना है। इसलिए ब्रह्मा का तन उनका मुकरर है, स्थापना का कार्य उनसे करवाया, और फिर ब्रह्मा अव्यक्त हुए। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी मेरे समान बनो। इसी प्रकार ये सैपलिंग लग रही है नई दुनिया की। तो अपमान अगर हुआ तो भी हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने तो अपना फर्ज निभाया, जो बाबा ने करवाया वो हमने किया, हमने महिमा के लिए तो किया ही नहीं। तो सफलता असफलता में भी समान। अब इस कर्म योग से कर्म भोग पर कैसे विजय पाएंगे? भक्ति मार्ग में तो यही समझते थे कि अगर दुख भी हुआ तो कहेंगे भगवान ने दिया, और यहां तक कह देते थे तेरा भाणा मीठा लागे, हे भगवान तो मुझे कुछ भी दे दे, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करता सब में मैं राजी हूं, चाहे आप दुख दो चाहे सुख दो। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मैं दुख तो देता ही नहीं हूं, मैं तो तुम बच्चों को सुख ही देता हूं, मैं तो कभी तुम बच्चों को भी कष्ट तो देता ही नहीं हूं। अगर मिलता है कष्ट, आपके मन की स्थिति है ये, तो ये दुख सुख ये भी मन की स्थिति है। तो इसीलिए जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है, ये ज्ञान स्पष्ट हो गया, मेरी बुद्धि में आ गया, तो वो जो भी कर्म भोग का रूप होगा वो हमें सूली से काटा अनुभव होगा, होगा सूली समान, वो समस्या वो बात या कुछ भी, लेकिन वो कांटे समान महसूस होगी। इसलिए नहीं, कांटे समान ऐसे नहीं होगी कि बाबा ने दिया इसलिए स्वीकार करो, ये बाबा ने नहीं दिया है, ये है तो मेरे कर्मों का ही फल। इसीलिए कर्म सिद्धांत हमें सावधान करता है कि आप जो करोगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो कर्म की गति से प्यार करो, इस ज्ञान से प्यार करो, कर्म की गति से डरो मत कि हाय पता नहीं मैंने ये गलत कर्म किया है, पता नहीं क्या मुझे इसकी सजा मिलेगी। अगर अच्छा कर्म किया है तो चिंता करने की दरकार ही नहीं है, उसका फल अच्छा ही होगा। न किसी को वर्णन करने की दरकार है कि मैंने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, ये किया वो किया। कई आते थे बाबा के सामने और खूब महिमा करते थे अपनी सेवा की, बाबा मैंने इतने सेंटर खोले, बाबा मैंने ये गीता पाठशालाएं खोली, बाबा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो बाबा उनको रोक देते थे, अच्छा बच्ची बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इतना वर्णन करने की जरूरत ही क्या है, किया तो ठीक है अपना ही भाग्य बनाया। हाँ कुछ भी है समाचार पत्र में लिख दो, तो बाबा को बाबा कहते थे पत्र में लिख दो तो बाबा पढ़ लेंगे। एक बहन का मिसाल देती थी मनोहर दादी हमारी, तो उसने क्या किया, हाँ उसने पत्र में सब लिखा, बहुत महिमा की अपनी कि मैं कैसे मैंने सेवा की। फिर बाबा के पास मिलने के लिए आई मधुबन में, तो बाबा को फिर से वर्णन करने लगी, बाबा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो बाबा तो शांत हो गए। फिर बाबा ने उसको बीच में कैसे रोका, बाबा ने कहा बच्ची ये तुमने पत्र में भी लिखा था ना? हाँ बाबा मैंने पत्र में लिखा, मैंने सब कुछ पत्र में लिखा। अब बाबा ने कहा बच्ची बाबा जानते हैं, बस चुप हो जाओ, ज्यादा महिमा मत करो। ये नहीं जैसे नहीं उसका उसका कोई दिल दुखाया ये कह के कि अभी बस 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 बहुत हुआ, अपना अभिमान मत दिखाओ। लेकिन बाबा बच्ची बाबा जानते हैं, आपने लिखा था ना, बाबा जानते हैं, माना चुप हो जाओ। बाबा तो उसको वही है कि चुप हो जाओ। तो अगर कोई अच्छा कार्य किया तो बहुत ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना वर्णन करेंगे उतना उसका भाग्य कम हो जाएगा। इसलिए वर्णन न करो, आपका भाग्य बन गया, आपका पुण्य बन गया, आपका जमा का खाता बढ़ गया। और अगर आपने कोई गलत कर्म किया है तो छिपाओ मत, गलत कर्म किया है तो छिपाओ मत। और दुनिया में तो उल्टा करते हैं, कोई गलत कर्म किया मत बताना किसी को, मत बताना मत बताना, सबको कहेंगे नहीं बताना। और बाबा कहते गलत कर्म किया सबको बताओ कि हाँ ये मैंने गलती की है। तो अगर वर्णन करेंगे बताएंगे बाबा को भी बताएंगे सबको, सबको मालूम तो पड़ ही जाएगा, कोई भी बात छिपती तो है नहीं, तो बता दो तो आपकी सजा आदि माफ हो जाएगी क्योंकि आपने सच बताया। वो सच जो बताया ना उसका पुण्य जमा होगा, जो गलत कर्म किया उसकी सजा तो मिलेगी लेकिन सूली से कांटा हो जाएगा क्योंकि सच बताया। और जो सही बहुत अच्छा कार्य किया और वर्णन किया तो आपका भाग्य आधा हो जाएगा। ये कर्म की गति है, इसीलिए बाबा कहते सच बताओ, बाबा को अपना पोता मेल बताओ। तो कर्म भोग पर विजय कैसे पाएंगे उस कर्म योग से? एक तो कर्म किया, और कहा जाता है ना नेकी कर दरिया में डाल, वर्णन मत करो। और दूसरी बात, जो हमने कर्म किया वो स्वीकार करो, ये मेरी ही भूल है। अगर गलत कर्म किया ये मेरे ही कर्मों का फल है, तो अभी तो हो गया, सजा तो मिलेगी लेकिन आगे के लिए सावधान हो जाऊं, आगे के लिए ये ना करूं। हमारी मम्मा यही बताती थी, मम्मा से पूछते थे मम्मा पुरुषार्थ, पुरुषार्थी किसको कहेंगे? पुरुषार्थी, तो मम्मा कहती थी पुरुषार्थी उसको कहेंगे जो एक बार भूल अगर हो गई तो फिर दोबारा ना करे, एक बार भूल हो गई तो दोबारा ना करे, क्योंकि पता ये भूल है तो फिर दोबारा क्यों करनी है। पर दोबारा भी अगर की भूल तो फिर तो बाबा कहते सजा तो 100 गुना हो जाएगी, पता भी है। इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, जो कानून है उस पर आप नहीं चले या बहाना नहीं बता दे सकते कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि बाबा ने कर्म की गति का ज्ञान तो पूरा दे दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है। तो पता है सब कुछ और फिर भी भूल कर रहे हैं, तो फिर सजा तो बाबा ने कहा 100 गुना हो जाएगी। इसीलिए कर्म की जो गति है, फिलॉसॉफी है, उससे प्यार करो कि इससे हम परिवर्तन लाते हैं अपने जीवन में, और जो है मेरे सामने उसको स्वीकार करो, उसमें प्रश्न नहीं करो ये क्यों हुआ, मेरा क्या दोष, मैंने क्या पाप किया, मेरे कोई क्यों, ये सब प्रश्न नहीं उठेंगे, पर स्वीकार करेंगे प्यार से। परंतु क्यों दुखी नहीं होंगे? हम पहले दुखी क्यों होते थे? क्योंकि हम समझते थे कि भी भगवान ने दिया, ये भगवान ने हमको ये सजा दी है, या भगवान ने ये हमारे ऊपर मेरे कर्म का फल दिया है। भगवान कहते मैं तो देता ही नहीं हूं किसी को भी दुख, उसको धर्मराज सजा देगा। बाबा तो प्यार का सागर है, वो तो रहम दिल है ना। कई बार होता है ना परिवारों में होता है, बच्चे बहुत तंग करते हैं, अब माँ तो बहुत प्यारी है, बहुत रहम दिल वाली है, लेकिन पिता जो है वो थोड़ा कठोर होता है थोड़ा। हाँ, तो बच्चे पिता से डरते हैं, माँ से नहीं डरते, क्योंकि तो माँ तो प्यार करने वाली है। तो कोई भूल की तो माँ को अच्छा तो नहीं लगा। आज भी बाबा ने कहा कि चलो थोड़ी आंख तो दिखानी पड़ती है, वो तो पद छोटी बात है, वो तो आंख दिखाओ बच्चा अगर कोई गलती करता है ना, परंतु आंख भी आंख दिखा करके फिर प्यार भी करो। परंतु उनको अगर सजा देनी है तो माँ तो सजा नहीं देगी। कई बार बच्चे को माँ कहेगी कि डैडी तुमको मारेगा, हाँ डैडी तुमको मारेगा, ये नहीं कहती मैं मारूंगी, डैडी मारेगा, क्योंकि माँ तो प्यार करने वाली है। और कई बार इसका रिवर्स होता है, माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है और पिता बहुत प्यारा होता है, वो बहुत प्यार करता है बच्चों को, पर माँ स्ट्रिक्ट है तो कोई गलती करेगा तो पिता कहेगा मम्मी मारेगी तुमको, मम्मी मारेगी। तो बाबा भी यहाँ क्या कहते हैं, कई बार कोई बच्चे गलती करते धर्मराज सजा देंगे, ये नहीं कहता मैं सजा दूंगा, बाबा सजा नहीं देते, वो तो प्यार का सागर है। पर धर्मराज वो राइट हैंड है बाबा का। अभी तो बाबा कहते हैं कि अभी तक धर्मराज का पाठ शुरू नहीं हुआ है, अभी मात पिता शिक्षक सतगुरु सखा बंधु ये सब पाठ चल रहे हैं, भगवान के अभी भी चल रहे हैं, लेकिन धर्मराज का पाठ अंत में शुरू होगा। अभी तो बाबा नजरअंदाज कर देंगे, कई बातें कई भूले बच्चे करते हैं, लेकिन बाबा को सच बता दो और उस भोग पर विजय कैसे पाएंगे उसके लिए भी बाबा युक्तियां बताते हैं। जब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, बाबा कहते अशरीरी बनो, सेकंड में अशरीरी बनो, सेकंड में परम धाम चले जाओ, सेकंड में फरिश्ता बन जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ, सेकंड में स्वर्ग में चले जाओ, ये मानसिक एक्सरसाइज करो। तो जब ये मानसिक एक्सरसाइज करते हैं तो मन और बुद्धि बहुत मजबूत बनते हैं, फिर कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है हम उन पर सहज विजय पा सकते हैं। ये अष्ट शक्तियां जो बाबा कहते हैं ना, किसी भी शक्ति को ऑर्डर करो वो शक्ति उसी समय हाजिर हो जाए। अब किसने मुझे बहुत बुरा भला कहा, डांटा, गुस्सा किया, कुछ भी किया, लेकिन उस समय मैं क्या कहूँ, सहन शक्ति आ जाओ। हाँ, बाबा ने एक बार कहा था, अब आप आह्वान करो उस शक्ति का, सहन शक्ति आ जाओ। तो उसी समय जैसे सहन शक्ति आ गई, कैसे सहन शक्ति आ गई, जो कुछ भी आप आपको कोई सुनाते हैं आप चुपचाप एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, आपके दिल पर दिमाग पर असर नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं हम पांच बातें बताते, जब कोई आपको गुस्सा करे या कोई डांटे कुछ बहुत बुरा भला कहे तो उस समय क्या क्या सोचो। जैसे दवाई भी डॉक्टर देगा ना, पहले हल्की दो हल्का डोज देगा, फिर भारी डोज देगा, भाई असर कर रहा है तो पहला डोज क्या ले लो। अगर कोई ऐसे करे तो उस समय मन में क्या सोचो, मन में क्या सोचो, ये उस आत्मा का संस्कार है, उस आत्मा का ये संस्कार है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, इसका वैसा ही संस्कार है। तो उसका संस्कार है तो उस पर दया आती है, फिर परंतु फिर और करे तो उस समय क्या सोचो कि ये ड्रामा है, ड्रामा चल रहा है, ये खेल चल रहा है, इस समय इसका ये पार्ट है। पहले सोचो ये संस्कार है इसका, ये अपने वश में नहीं है, फिर सोचो ये ड्रामा है, ड्रामा का खेल चल रहा है, खेल में तो खिलाड़ी खेलते हैं, मनोरंजन, आज भी बाबा ने कहा मनोरंजन खेल है ना, इस खेल में हरे का अपना अपना पार्ट है। तो जबकि हरे का अपना अपना पार्ट है इसे दुखी क्यों होते हैं, मुझे क्या पार्ट बजाना है वो देखना है। कोई ड्रामा होता है ना तो हर एक अपना अपना पार्ट याद करता है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, तो अपना पार्ट याद करता है, दूसरे का पार्ट क्या है उसको क्यों चिंता, उसको अपनी चिंता होनी चाहिए, मुझे क्या पार्ट, मुझे क्या बोलना है, तो मैं अपना सोचूंगा कि मुझे क्या बोलना है, तो उसका ये पार्ट है, पर मेरा पार्ट क्या हो वो मुझे सोचना है। तो फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, ये मेरा कोई किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, वो जन्म का हिसाब किताब चुकता हुआ। कई हमसे पूछते हैं कि कैसे पता चले कि वो चुप तो हुआ या कोई नया हिसाब किताब बना। हाँ, अगर मैंने भी उसका रिएक्ट किया, प्रत्युत्तर दिया, तो ये नया हिसाब किताब बना। पर हम उसमें अंतर में सहन कर लिया, समझो ये मेरा हिसाब किताब चुप्त हुआ। तो हिसाब किताब बनता कब है? जब हम रिएक्ट करते हैं, इसे सामना करते हैं। पर सहन कर लिया और उसका अपने ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो समझो ये चुप्त हुआ। तब बाबा कहते हैं उस शक्ति का आह्वान करो, उसको तो सहन शक्ति आ जाओ। परंतु तो अगर वो ज्यादा कर रहा है, एकदम ज्यादा कर रहा है, तो उस पर दया करो। कैसे दया करेंगे? कि ये कमजोर आत्मा है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना, इसलिए बोलते जाएंगे। चलो कोई होता है दो शब्द बोला फिर शांत, लेकिन बोलते जाएंगे और दूसरे को दुखाते जाएंगे। तो समझो कि हाँ, ये आत्मा बहुत कमजोर है। तो कमजोर आत्मा पर तो दया आती है ना, बेचारा। आज भी कल भी बाबा ने कहा, कोई अमीर होता है वो बहुत गरीब बन जाता है, तो उस पर दया आती है कि बेचारे को मदद करें। तो अगर कोई अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, तो उस आत्मा पर दया आनी चाहिए कि ये बेचारी कमजोर आत्मा है, मुझे उसको मदद करनी है, उसको दुआएं देनी है, उसको गुड विशेस देनी है, कि ये उसकी भी बुद्धि समझ जाए, ये भी समझ जाए, अपने आप को महसूस करे कि ये मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। पर सीधा कहेंगे कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, बोल देंगे तो फिर वो बात तो फिर और बढ़ सकती है, वो आग में तेल डालेंगे। अगर कहेंगे इसमें क्या हुआ, तो और आग में तेल होगी, उसको पसंद तो है नहीं। और आपने कहा इसमें क्या हुआ, है ना, कई बार ऐसे सामना करते हैं। तो कौन सी शक्ति का किस समय आह्वान करना है वो भी देखना होता है। इसलिए परख शक्ति और निर्णय शक्ति भी साथ में दी गई है। ऐसे न हो कि जब सहन करना है तो सामना करो, और जब सामना करना है तो सहन करो। तो सहन क्या करो और सामना क्या करो? सहन करो व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति को सहन नहीं किया, सामना किया, तो हिसाब किताब बन जाएगा। और जहां परिस्थिति आती है वो सामना करो। जिस परिस्थिति को आप रोक नहीं सकते, उस परिस्थिति का जो सामना होता है उसको स्वीकार करो, सामना करो। किसी नजदीकी संबंधी की मृत्यु, बहुत नजदीक था, बहुत प्यारा था, अब उसकी मृत्यु हो गई, एक्सेप्टेड। इसको कहते हैं उस परिस्थिति का सामना करो। और जब परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सूली से कांटा हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किस समय कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, वो परख करके निर्णय करो, तब उस कर्म भोग को आप चुप्तू कर सकेंगे। और नया कोई खाता मत बनाओ। हम हमेशा यही कहते हैं कि नया कोई खाता मत बनाओ। अभी तो 63 जन्मों का ही पाप कर्म का हिसाब किताब इतना है, वो चुप्तू करे इसी में ही समय जाएगा। लेकिन हमको तो 3 बातों पर ध्यान देना है। केवल 63 जन्मों का हिसाब किताब चुप तो नहीं करना है, वो तो करना ही है, लेकिन इतना कमाई करनी है, इतनी कमाई हो जो 21 जन्मों की जो प्रारब्ध है वो भी मुझे जमा करनी है अभी, तो कितना कमाना पड़ेगा। 63 जन्मों का कर्जा चुक तो करना है, 21 जन्मों की कमाई करनी है, तो हमको और तो कर्जा नहीं लेना चाहिए ना, और तो कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए। कितना वैसे ही सिर पर बोझ बहुत है आत्मा पर, तो उस बोझ को भी खत्म करना है और इतनी कमाई करनी है जो 21 जन्म खा सकूं, तो कितना कितना कमाना पड़ेगा, तो वो कमाई कैसे होगी? कमाई कैसे होगी? जब हम श्रीमत का पालन करेंगे। ये श्रीमत हर घड़ी याद रहे, बाबा ने क्या कहा है, या बाबा ने क्या किया, या बाबा अगर होते तो वो क्या करता। मुझे तो बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है, बाबा का नाम बाला करना है, बाबा का शो करना है, सन शोज फादर। बच्चे का फर्ज है पिता का शो करना, पिता को भी नाज हो उस बच्चे पर। ऐसे नहीं पिता सोचे अरे ये बच्चा मरा भला मुआ भला, कई होता है ना माँ बाप कहेंगे ऐसा बच्चा पैदा ही क्यों हुआ, और कई माता पिता अपने ऐसे बच्चे को होनहार बच्चे को देख के कितना खुश होते हैं। तो बाबा हमको देखे तो कैसे कितना खुश हो, इसीलिए प्रभु प्रिय बनना है, स्वयं प्रिय भी बनना है, प्रभु प्रिय भी बनना है, लोकप्रिय भी बनना है, सबका प्रिय बनना है। तो सबका प्रिय कैसे बनेंगे? जब हम श्रीमत पर चलेंगे। हाँ, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, बाबा ने ये भी मुरली में कहा है, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। 95% को संतुष्ट किया, 5% तो सदा असंतुष्ट रहेगा ही, पर वो असंतुष्ट वास्तव में तुम्हारे कारण नहीं है, वो अपने संस्कारों के कारण है। वो कभी भी संतुष्ट रह ही नहीं सकता है, भगवान से भी असंतुष्ट होता है वो, मनुष्यों से तो क्या। तो मैं उस कर्म भोग को कैसे चुकतू करूंगी कर्म योग से, जिसको बाबा कहते अपकारी पर भी उपकार करो, दुआ दो दुआ दो दुआ लो, कभी भी मुख से बद्दुआ ना निकले, कभी भी नहीं। वो बद्दुआ उसको क्या लगेगी, मुझे ही लगेगी। कहते हैं ना किसी दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे परंतु आप ही गिर जाएंगे, खोदा दूसरे के लिए बद्दुआ दी पर वो बद्दुआ घूम करके मेरे पास ही आ जाएगी, तो ऐसी बद्दुआ हम दे ही क्यों, जो हिसाब किताब भी बढ़े हमारा और कर्म भोग और बन जाए, संबंध भी बिगड़ जाए। उसने जो किया वो उसका कर्म, क्यों इसने किया वो भी नहीं कहना है। अगर क्यों का माना मेरा कोई हिसाब किताब था उस आत्मा के साथ, तो क्यों ये शब्द ही क्यों कहा, जरूरत नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब है मेरा, इसीलिए उसने ऐसे किया। अगर मेरा हिसाब किताब नहीं होता वो ऐसे थोड़ी करता, परंतु उसको स्वीकार किया और खुद में परिवर्तन ला दिया, उसको सहन कर लिया। तो ये है कर्म भोग पर कर्म योग द्वारा विजय। और बाबा की सब मुरलियों में इतनी ऊंची ऊंची गहरी गहरी बातें हमें मिलती है, अगर एक एक पॉइंट को हम अमल में लाएं तो सचमुच आज ही देवता बन जाएंगे। तो देवता तो बनना है ना सबको, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या है लक्ष्य, मनुष्य से देवता बनना है। तो देवता बनने के ये लक्षण है जो बाबा हमें श्रीमत के द्वारा देते हैं, जिससे नया धर्म देवी देवता धर्म आरंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, इसकी सैपलिंग लग रही है। तो हम भगवान के मददगार हैं ये सदा सोचना, जब ये सोचेंगे तो हम भगवान के मदद की, हम भगवान के मददगार हैं, तो हम कोई भी गलत कर्म नहीं करेंगे, और सहज ही जो भी हमारा हिसाब किताब है वो बाबा की याद से। और आज जो बाबा ने मुरली में कहा निश्चय, इतना पक्का निश्चय हो, जिस पक्के निश्चय से हम कभी हिलेंगे नहीं और बाबा का कार्य हम सफल करेंगे और सफलता को पाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।